તારીખ 20/9/1993 શ્રી સમયસર ગાથા 204-206 ઉપર પૂજ્યભાઈ શ્રી શશીભાઈનો ભાવનગરમાં પ્રવચન સળંગ પ્રવચન નંબર 376 મૂળ કેસેટમાં ખૂબ જ ડિસ્ટર્બન્સ તથા હમિંગ છે.
टीका में वे जो बात चली यहाँ सहज ज्ञान शुद्ध अंत तत्व स्वरूप परम तत्व में व्यापक होने से स्वरूप प्रत्यक्ष है इतना वचन पड़ा है. वचन तो अमृत जैसा है, जैसे अमृत पीने से मरण नहीं होता
जी,
अगर अमृत पिया जाए तो
मरण नहीं होता,
मरण नहीं होता, जय पीने से मरण होता है
जी,
पर जय के प्रतिपक्ष लोग अमृत को पीने से मृत्यु नहीं होती. वैसे इस अमृत वचन का भूलाने का पान करने से जन्म मरण मिटता है.
बराबर
हमारे भाव भाई कहते हैं कि बात पक्की के कच्ची. मतलब उनका यह है पूछा कि आपको पूरा विश्वास है या अधूरा विश्वास है या विश्वास ही नहीं है. कहने का उसमें का ये प्रयोजन है इनका, ठीक प्रयोजन कोई प्रयोजन है कि पक्का निर्णय होना चाहिए. आप कोई श्रीमंत सोई राजा महाराजा किसी से पूछे कि आपकी मृत्यु नहीं हुए, आपका मरण हो ही नहीं, ऐसी एक गोली खिलाई जाए तो आप कितनी कीमत देंगे? कितनी दें बताइए,
कितनी मांगेगा अपनी,
कितनी मांगे उतनी दें. क्या किसी रिश्ला में तो पकड़ गया बहुत. अगर हम जिंदे रहेंगे तो जितना दिया है इससे ज्यादा कमा लेंगे, पैदा कर देंगे, क्योंकि जिंदा है तो. तो ये अमरत्व की टैबलेट अगर मिल गई ना, मिले तो वो कुछ भी करने के लिए तैयार हो. ऐसा भी कहे तो ऐसा नहीं, हमारा गुलाम रहकर रहना पड़ेगा, गुलाम होकर रहना पड़ेगा, मंजूर है. क्या करेगा, क्यों मरना नहीं है किसी को. ये बिना कुछ लिए श्री गुरु तो हमारे दिगंबर हैं, लेते ही नहीं कुछ, तुम कुछ मात्र संग नहीं जीने के, तुम कुछ मात्र संग नहीं जीने के, ज्ञान ध्यान तप बल है. संग है लेकिन ज्ञान ध्यान तप बल है, पर मित्र भी निर्नम है. ऐसे साधु गुरु कभी मिले हैं, ऐसे साधु से गुरु कभी मिले हैं. भागसिंह जी के एक गुरु की स्तुति है, प्रशंसा है. उन्होंने ये अमर होने की दवाई यहां दी है, इसकी कीमत को कुछ लेंगे नहीं, लेकिन फिर भी हमें तो चुकानी होगी. कैसे तो पात्र होकर के अधिकारी होकर के ग्रहण कर पाएंगे. ऐसे सुनने से मिलने वाली बात नहीं है या करने से मिल जाने वाली बात नहीं है. तो ठीक है, निमसार कर लिया या निमसार सुन लिया, तो इससे तो कोई जन्म मरण मिटने वाला नहीं. विचार तो यह है कि ये जो विषय है इधर का, इस गाथा का, टीका का जो विषय चल रहा है, ये बिल्कुल मुमुक्षुता से उत्कृष्ट योग्यता का विषय है।
ये
जो मुमुक्ष जघन्य दशा में है मुमुक्षुता के, या मध्यम कोटि की दशा में है, उनको तो ये बात पकड़ने में भी नहीं आएगी, समझने में भी नहीं आएगी, ग्रहण करने की बात तो दूसरी होती है।
हमारी तो शुरुआत
नहीं,
हमारी तो शुरुआत
नहीं, शुरुआत नहीं हुई है तो हमने नहीं की है, इसलिए नहीं हुई है। और ये बात हमारे सत्संग में बहुत बार हो चुकी है कि पात्रता या अधिकारीपना होने के लिए कोई शर्त नहीं रखी है कि पूर्व तरह ऐसे होनी चाहिए। केवल ज्ञान लेने के लिए शर्त है, कौन सी शर्त है? कि मुनि दशा भाव लिंग प्रकट होनी चाहिए, बिना मुनि दशा प्राप्त किए किसी को केवल ज्ञान नहीं होता। और मुनि दशा की भी पूर्व शर्त है कि जो सम्यक दृष्टि होंगे वही मुनि होके हो सकेंगे, बिना सम्यक दृष्टि मुनि पना पूर्व शर्त है। और सम्यक दर्शन की भी एक पूर्व शर्त है कि बिना पदार्थ निश्चित सम्यक दर्शन नहीं होता। और ये पदार्थ निश्चय की भी ये शर्त है कि बिना पात्र का पदार्थ निश्चय नहीं होता, किंतु पात्रता के लिए कोई शर्त नहीं। आखिर की सेकंड तक कितना भी पापी हो, क्या
ये
काली जिंदगी जीने का जीवन जिसने जिया हो, फिर भी वो अपना आत्मकल्याण चाहता है शुद्ध अंतकरण से। कैसे? शुद्ध अंतकरण से। तो उसी वक्त वो पात्र बनता है, कोई पूर्व दशा के पूर्व अवस्था की कोई शर्त
नहीं है,
उसी वक्त वो पात्र बनता है। पर जितनी अपने आत्मकल्याण की तीव्र भावना, उतनी पात्रता उसी वक्त रोकनी होती है, पीछे से नहीं होती है। यदि पीछे से नहीं मिलती तो आज तो भावना किया पर इसका फल अगले भाव में मिलेगा आने वाले, ऐसा नहीं। या 5 साल के लिए मिलेगी, या 6 महीना बाद में मिलेगा, वो भी उसी वक्त मिलता है। बात रही अपनी पात्रता की, उत्कृष्ट पात्र है वही अपने सरल प्रत्यक्ष स्वरूप को प्रत्यक्ष कर सकता है। दूसरा प्रत्यक्ष स्वरूप को प्रत्यक्ष नहीं कर पाएगा, और जब तक वो प्रत्यक्ष नहीं कर पाएगा वहां तक जो भी कुछ करेगा, जो कुछ भी होगा, उसमें स्वरूपानुभव नहीं है, बहुत भ्रमण का अभाव होने की कोई परिस्थिति उसमें नहीं रही है। ये बात साफ साफ है। तो मैं ये कहा कि वो सहज ज्ञान जो स्वरूप प्रत्यक्ष कहा, ऐसा जो सहज ज्ञान ये अंतर तत्व रूप है। कैसा है?
अंतर
तो बाह्य तत्व नहीं है। नव तत्व जीवादि बही तत्व कहा, ये तो चलता है, ऐसा पढ़ते ही जा सकते जीवादि वही तत्व। तो ये तो बाह्य तत्व है और ये अंतर तत्व है। यहां भी कहेंगे उसी गाथा की टीका में भी कर्म पारिणामिक भाव को अंतर तत्व कहेंगे। अंतर तत्व है मैंने क्या कि जो बाह्य दृष्टि से नजर नहीं आता, जिसमें बाह्य दृष्टि वालों का कोई काम नहीं है। अंतर तत्व के लिए अंतर्दृष्टि चाहिए, अंतर तत्व के लिए बाह्य दृष्टि कोई काम नहीं कर सकते, इसलिए अंतर्दृष्टि चाहिए। ये शुद्ध अंतर तत्व रूप है, भीतर में कोई मिलावट नहीं है। और अपना जो परम तत्व है, आत्म तत्व है, परमात्म तत्व है, उसमें वो व्यापक है। कौन व्यापक है? सहज ज्ञान व्यापक है। सहज ज्ञान परमात्म तत्व में, परम तत्व में व्यापक है। क्यों ऐसा लिया? कि यहां व्यापकता से इसको ग्रहण करने का है। सहज ज्ञान की व्यापकता से उसको ग्रहण करना है। इसकी मौजूदगी है ना? तो मौजूदगी है, ये कोई कल्पना का विषय है, कोई अनुमान का विषय है, कोई तर्क का विषय है, कोई विकल्प का विषय है, कहीं एक व्यापकता का विषय है।
इसमें क्या वृद्ध है?
सही ज्ञान, सहज ज्ञान है, उसमें कोई न द्रव्य का भेद है, न गुण का भेद है, न पर्याय का भेद है।
इस प्रकार में भी लिया है, वो किस अपेक्षा से लिया?
हमें उसको निरपेक्ष समझना है।
क्या? अच्छा, उसी का मंतव्य क्या?
मैं तो कह रहा हूं, मंतव्य को ही कह रहा हूं,
उसी का समझना।
देखिए, हमारी जो समझने की पद्धति है, ये भेद प्रधान रही। हर बात में हमें एक प्रश्न उठता है कि द्रव्य है, ये गुण है या पर्याय है, है कौन? तुम से एक कहना चाहिए। लेकिन इससे भी आगे कुछ बात है। क्या द्रव्य गुण पर्याय से आगे भी कोई बात है? वो है, वो ऐसी बात है। पर इसको पंचाध्यायी सात उत्तरार्ध आपको आगे आधार देता हूं मैं। पंचाध्यायी उत्तरार्ध 761-63 गाथा में, तीन गाथा साथ में, इसको क्या कहा हमने? कि जो परम तत्व है ये नित्य भी नहीं है, अनित्य तो है ही नहीं, लेकिन नित्य भी नहीं। ये अनुभव स्वरूप है। क्या है? यहां लिखा है, ये शब्द पड़ा है संस्कृत में, अनुभव स्वरूप है। अनुभव स्वरूप में द्रव्य का भेद, पर्याय का भेद, गुण का भेद लागू होता? में चर्चा में तो प्रश्न चर्चा तो बहुत चलती है। शास्त्र स्वाध्याय में भी हमारे बहुत अध्ययन करने वाले पुराने विमुक्ष में उन्होंने ये कहा कि उभय स्वरूप कहें तो क्या इसमें आपत्ति है? प्रश्न तो कर सकते हैं, पर लगाने में तो कोई पैसा नहीं देना पड़ता। नरेंद्र भाई
लगाना चाहिए कि नहीं?
योग्य मात्रा में तो लगाना ठीक है। क्या इसके लिए एक योग्य मात्रा है जिसको सुपर्क कहते हैं? अगर उस मात्रा से हमारे तर्कना उल्लंघन करके आगे बढ़ जाती है तो उसको फिर कुतर्क कहा जाता है। इसलिए तर्क करना, लेकिन सुतर्क करना, कुतर्क कभी नहीं करना, ऐसी बात है। प्रश्न कैसा भी पूछा जाता है, लेकिन सुतर्क की मर्यादा में, कुतर्क की मर्यादा में जाने से हमें नुकसान है, पूछने वाले को दूसरे का नुकसान नहीं है। देखना तो उसको उभय स्वरूप क्यों नहीं कहे। उभय स्वरूप कहने से ये प्रमाण का विषय होता है और भेद मात्र व्यवहार का विषय होता है। कहा कि नित्य को हम व्यवहार कहेंगे या अनित्य अनित्य को तो व्यवहार कहेंगे, लेकिन नित्य के भेद को भी व्यवहार कहेंगे। और निश्चय है तो व्यवहार का निषेध करके चलता है, निश्चय नहीं करके चलता है तो व्यवहार का निषेध करके चलता है वो तो। इसलिए न तो अनित्य है न तो नित्य है, तो अनुभव स्वरूप है, जैसा है वैसा अनुभव स्वरूप है, ऐसा लेना भाई का पर्याय का अर्थ कभी उत्पाद ये बिना का भी होता है और उत्पाद वाला भी होता है। तो नियम सार में जो कारण शुद्ध पर्याय है उसमें उत्पाद ये नहीं लिया है। हाँ, ये नियम यहाँ से चला है, 12-13 से 15 के का संकेत चल रहा है।
ये भी कहा
हाँ, ये तो है रचना अभी मैंने अभी रिसेंट में देखा है। क्योंकि ये सहज ज्ञान है, शुद्ध अंत तत्व स्वरूप है और परमात्म तत्व में व्यापक है, इसलिए वो एक समय की पर्याय नहीं है। और स्वरूप प्रत्यक्ष है, स्वरूप से प्रत्यक्ष है, स्वभाव से प्रत्यक्ष है, फिर भी वो पर्याय नहीं है। ये स्वरूप प्रत्यक्ष है, इसलिए तो कहा कि ये मात्र बुद्धि की पहुंच का विषय नहीं है, ये सिर्फ क्षण का विषय नहीं है, इसलिए मात्र विद्वत्ता का या पंडिताय का विषय नहीं है, किंतु इसके लिए उत्कृष्ट पात्रता आवश्यक है। ये एक मात्र इसका इलाज है, दूसरा कोई कारण नहीं। घूमने गए थे, थोड़ी चर्चा चली, चर्चा तो हमारे भावना उपाध्याय के घूमने चली थी, हमारे सुबह में साहब के समय दर्शन की पूर्व पर्याय की कोई चर्चा चली, उनको सत्संग नहीं मिला। क्या सत्संग नहीं मिला? अजमेर में रहते थे, इन दिनों में कोई सत्संग नहीं था, कोई ज्ञानी नहीं मिले। गर्भ दिगंबर होने से समय सारा आगे शास्त्र तो खुद के घर में नहीं थे, पढ़े भी थे बहुत, पढ़े थे तो मैं बहुत पढ़ते थे, तो कितने घंटे पढ़ते थे इसका हिसाब नहीं रहता था, लेकिन इसमें से कोई रास्ता नहीं मिला। आत्मकल्याण की भावना तीव्र हो गई, तीव्र होगी, तीव्रतर होगी, तीव्रतम हो गई, उत्तम हो गई, तीव्रतम हो गई, मैंने उत्तम हो गई। बस उसी सिलसिले में कुदरत ने उनको स्वामगढ़ पहुंचाया। किसने पहुंचाया? कुदरत ने पहुंचाया, एक जिम्मेवारी कुदरत की होती है। जब किसी की आत्मभावना की भावना, आत्मभावना शिविर है, उत्तम होती है, उत्कृष्ट होती है, तो उसको कार्य संपन्न करवाने की जिम्मेवारी कुदरत की होती है। कुदरत बंधी हुई है इसके साथ, आत्मभावना के साथ कुदरत बंधी हुई है। तो उसी साल में 2002 के साल में आत्मधर्म का हिंदी संस्करण चालू हुआ और प्रचार के माध्यम से इधर उधर घूमने लगे, कांग्रेस ट्रस्ट के ओर से इधर उधर बोलने लगे। उस वक्त तो एक कॉपी का चार्ज करते थे, लेकिन प्रचार में तो चार्ज करने का सवाल नहीं, बिना चार ऐसे ही भेजे जाते हैं, सभी प्रकार होता है। ऐसे एक कॉपी, पहली कॉपी उनके पास पहुंची। बस ये कुदरती परिस्थिति जो पैदा हुई वो उतनी हुई, बात तो कुछ और करनी है हमें
जी,
कि जब उनको 24 घंटे में परमार्थ सम्यक दर्शन निर्विकल्प दशा में प्राप्त हुआ, तो इसके पहले उनको आगे के दो संकेत कब हुए होंगे और कैसे हुए होंगे, ये हमारी चर्चा का विषय रहा। तो अगर कुछ आगे हुआ होता तो इधर संगणाने की जरूरत नहीं होती, पूर्व संस्कार होते तो आगम से ले लेते, वो पकड़ लेते आत्मा, न तो पूर्व संस्कार थे, न कोई पहला संकेत भी उनको प्राप्त हुआ था, फिर वो पात्रता उत्कृष्ट थे जी। तो उन्होंने गुरुदेव को प्रयत्न करते हुए सुना या देखा, वही चर्चा का विषय है। सुना तो उतना ही इसके जीवन परिचय में लिखा गया है कि उतना ही सुना के राग और ज्ञान भिन्न थे, राग अने ज्ञान भिन्न थे। गुरुदेव गुजराती में प्रवचन करते थे तो गुजराती भाषी नहीं थे, हिंदी भाषी थे, फिर भी उनको भाषा का व्यवधान नहीं हुआ। ऐसे मामलों में भाषा की बाधा कभी नहीं होते। देखिए पात्रता क्या काम करती है, हमें तो बुद्धि से पढ़ना पड़े कि गुजराती में क्या समझना, क्या बात हो रही है। ऐसे मामलों में भाषा से आगे का काम होता है, भाषा को अतिक्रमण करके ज्ञान काम करने लगता है, वहां पात्रता अवश्य। तो उन्होंने गुरुदेव से ये शब्द सुने, ऐसा वहां लिखा गया है उनके जीवन परिचय में। हमारी चर्चा में एक बात ऐसी चली कि उन्होंने गुरुदेव को सुना नहीं था, राग और ज्ञान भिन्न है ऐसा सुना नहीं था, लेकिन ऐसा परिणत हुए देखा था। क्या था? सुना नहीं था, देखा था। जब उनको पहला संकेत हुआ तब दोपहर की चर्चा में भी पहला संकेत भी 5 घंटा पर चली है, तो पहला संकेत क्या होता है कि उसमें ज्ञानी पुरुष का पहचान होता है, परिचय थोड़ा थोड़ा भी परिचय में पहचान हो जाता है। ऐसा नहीं है कि साल भर सौंदर रह जाए या 6 महीना रह जाए, जमी परिचय गुरुदेव का होता है तो बात भी नहीं है। प्रथम घंटे के परिचय में ये बात है, पात्रता कितनी काम करती है, जहां बुद्धि की पहुंच नहीं वहां पात्रता की पहुंच है। एक घंटे के प्रवचन में राग और ज्ञान भिन्न है ऐसा सुना नहीं, किंतु गुरुदेव को राग से भिन्न ज्ञान रूप परिणत हुए देखा। क्या हुआ कि गुरुदेव की जो अंत परिणति है, आत्म परिणति है, चैतन्य परिणति है, वहां तक वो पहुंचे और यही परिचय हुआ, बस बात खत्म, पहला संकेत हो गया। और मेरी वाचक से जो वाचिक ग्रहण किया उसने दूसरा संकेत ले लिया, प्रवचन के दौरान दो संकेत 1 घंटे और उस 24 घंटे में रात्रि के ध्यान में नींद नहीं आई थी, आई नहीं सकती। नींद हम जाती है या मिट जाती है, परिणाम में तैयार में रखते हुए नींद नहीं आएगी, क्योंकि ऐसा प्रोग्राम आता है तो क्या होता है, कैसा होता है कहने की जरूरत नहीं है, नहीं होती है। लेकिन रस बढ़ता है तो नींद नहीं आती है, रात को 1 बजे भी नींद नहीं आती है, क्योंकि रस बढ़ गया, अशुभ रस है, शुभ भी नहीं है। करते हैं रात्रि को तो सारी रात कर सकते हैं कि नहीं, अगर हमें रस है तो भगवान के भक्तों में सारी रात निकल जाती है, रात निकल ऐसे 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 इसमें अपना रस बढ़े तो सारे रात भर कर सकते हैं। ये तो आत्मरस बढ़ गया, क्या हुआ? आत्मरस बढ़ जाने से नींद तो आई नहीं सकती, भाव भ्रमण का अंत लेकर के खड़े हुए एक रात में, तो भाव भ्रमण का ये अमृत की पहले खा लिया हमने, ये गोली खाई पहले ही दिन खाई, गुरुदेव ने कितना चार्ज किया इनके पास से क्या लिया तो कुछ लिया क्या, मांगा क्या, उनको पहचानते भी नहीं थे कि कौन आए हैं, क्योंकि वहां तो बहुत लोग आते हैं, बहुत आते थे, सारे हिंदुस्तान से लोग आते थे वहां, तो कौन आए कौन जाए गुरुदेव को तो ज्ञान ही नहीं रहता। उत्कृष्ट पात्रता निश्चित ही ऐसी है, कहने का यहां यह अभिप्राय है कि नियम सार की टीका की यह चीज ऐसी है कि अगर हम पात्र होकर के इसको हमारे हृदयंगम करें तथा ज्ञान में ले तो स्वभाव प्रत्यक्ष है, तो अतीन्द्रिय प्रत्यक्ष ज्ञान में प्रत्यक्ष रूप से अनुभव गोचर हो जाता है, दिखता है इतना नहीं कहेंगे, अनुभव गोचर हो जाता है, क्योंकि ये वेदन का विषय है, ये अनुभव का विषय है, सिर्फ जानने का विषय नहीं है, हमारी कोशिश सब जानने की रहती है, अनुभव करने की कोशिश में हमें जाना चाहिए, जानने के विषय में उतना हमें कुटुंब को लंबाने की कोई आवश्यकता नहीं है। अब थोड़ा आगे चलेंगे कि केवल ज्ञान सकल प्रत्यक्ष में संपूर्ण प्रत्यक्ष है, रूपेशु अवधि में ये कथवा सूत्र का सूत्र है
जी,
जो टीकाकार निराज ने लिया में संस्कृत में इसका उद्धरण किया है, रूपेशु अवधि है, मैंने अवधि ज्ञान का विषय संबंध रूपी द्रव्यों में है, ऐसा आगम का वचन होने से अवधि ज्ञान निकल प्रत्यक्ष है, यानी एक देश प्रत्यक्ष है, कुछ अंश में प्रत्यक्ष है, केवल ज्ञान की तरह ये सर्व प्रत्यक्ष नहीं है, और उसके अनंत में भाग में वस्तु के अंश का ग्राहक होने से मनापर्य ज्ञान भी निकल प्रत्यक्ष है, तो भी कुछ अंश में ही प्रत्यक्ष है, केवल ज्ञान की तरह सकल प्रत्यक्ष नहीं है, और मति ज्ञान और सुख ज्ञान दोनों परमार्थ से तो परोक्ष है और व्यवहार से प्रत्यक्ष है, व्यवहार से मैंने हम व्यवहारिक प्रत्यक्ष जिसको बोला है, इंद्रिय प्रत्यक्ष जिसको कहते हैं, इसलिए वो प्रत्यक्ष भी कहा जाता है लौकिक व्यवहार में कि हमने प्रत्यक्ष देखा प्रत्यक्ष सुना, वास्तव में परमार्थ से मैंने वास्तव है वे परोक्ष है, क्योंकि उसमें प्रत्यक्ष बना जो है तो सखा ज्ञान की बात भी कर देता है, जो कल्याय रूप में जो कल्याय रूप आश्रम भी है, इसके प्रकार सखा प्रकार कल्याण में नहीं होता, जो पांडव रूप है हम उनकी बात करेंगे, क्योंकि मुख्य बात हम करनी है जो, और विशेष यह है कि तीन उपदेशों में सब बात छह प्रकार के प्रत्यक्ष परोक्ष को जो कहिए उसमें पांच बात विशेषता वाली नहीं है, क्या कहा? नकली ज्ञान परोक्ष है उससे कोई विशेषता नहीं लगेगा, और शिवज्ञान सकल प्रत्यक्ष है उसकी भी विशेषता नहीं लगी। और विशेष यह है कि रूपता की बात की सफा ज्ञान की उक्त ऊपर सुने हुए ज्ञानों में सब प्रकार में उक्त शु ज्ञानेश मैंने कहे हुए ऐसे ज्ञानों में साक्षात मोक्ष का मूल क्या है वो आश्रयभूत है ना जी सत्ता है वो आश्रयभूत है तो जो कल्याण है तो आश्रय करने की थी हमने सारे नियम साधने ये बात बार बार कही है कि कल्याण आश्रय करने योग्य नहीं है आश्रय करने योग्य तो नहीं है लेकिन भावना करने योग्य भी नहीं है। क्योंकि भगवान श्रीकृष्ण स्वामी ने यहाँ पर तत्व की भावना पारिणामिक भाव की भावना की बराबर विश्व भगवान अधिकार में भी भावना समझे उदय समय से किसी प्रकार मैं तो नहीं बड़े तत्व तो है बड़े तत्व है क्या ये पर द्रव्य है पर भाव है और ये है यही तो हुआ तो यही है मैंने भावना करने योग्य भी नहीं है आश्रय तो करते ही नहीं थे। ये ग्रंथ को कुंभकुंड स्वामी ने अपनी भावना के लिए लिखा है मुख्यतया ये पहली बात है। दूसरी बात है कि ये मनुष्यों के लिए लिखा है पहली बात तो अपनी भावना के लिए लिखा है तो वो तो पर्याय का आश्रय करते ही नहीं थे चतुर्थ संस्थान से छोड़ लिया था वो तो पर्याय पर्याय का आश्रय करते छोड़ा था ये तो चतुर्थ संस्थान से छोड़ा है तो मुनि दशा में उसको पद्रियन प्रभाव नहीं है तो कहते हैं हटा के जाता है कहीं इसलिए कि हम इसकी भावना भी नहीं करते हमको एक परम तत्व की ही भावना इसे तो ये आत्मभावना कहते हैं और ये आत्मभावना सारे ग्रंथ में देखी जाती है और आचार्य भगवान की ये आत्मभावना भी सारे ग्रंथ में देखी जाती है और मुझे इसका उल्लेख भी आखिर की गाथा में कर दिया इसको सता की गाथा में। विशेष यह है कि उसके ऊपर खड़े हुए ज्ञान में साक्षात मोक्ष का मूल नीलपरम तत्व उस नीलपरम तत्व में स्थित ऐसा एक सहज ज्ञान ही है ये आगे सहज ज्ञान का वो कहाँ कहाँ करता है तो साक्षात मोक्ष का मूल है सभी पर्याय पूर्ण शुद्ध होने का यही कारण है यही कारण परमात्मा है है कही है कल्याण कभी बात पास में आ जाती है ये साक्षियानों में साक्षात मोक्ष का मूल निध परम तत्व में स्थित ऐसा एक सहज ज्ञान ही है ऐसा एक सहज ज्ञान है तथा सहज ज्ञान उसके पारिवारिक भाव स्वभाव के कारण क्या था यह सहज ज्ञान पारिवारिक भाव स्वभाव के कारण पर्याय है क्या बहुत क्लियर किया है भव्यता परम स्वभाव है बहुत भाव उभर हुए थे भव्यता परम स्वभाव कहाँ है इसलिए क्योंकि आनंद की ये बात है कि जीव धनी हो या अधनी हो स्वभाव तो सभी थे एक तरीके हैं तो यहाँ ऐसा नहीं दिया पिताचार महाराज ने यहाँ ऐसा नहीं दिया ये अध्यात्म शास्त्र की खूबिया है जी आदम की कन्नी बातों से परे होकर के अध्यात्म शैली प्रवृत्ति है परमाणुओं में जैसे कि ये चारों पर्याय है कि आगम के हिसाब से तो शब्द लेकर भाव नहीं है, उन्हें भाव भी आत्मा का भाव है, शायद भाव तो आत्मा का है ही, इसमें कोई सवाल नहीं है आगम के हिसाब से। लेकिन ये आगम की टांग यहां नहीं लड़ा सकते, इससे आगे जाना पड़ता है, इसलिए उसको परमागम कहते हैं। क्या कहते हैं? आगम नहीं कह सकते, परमागम कहते हैं। हम आगम से भी परे की बात करते हैं, वो आगम से सिद्ध होती है, ऐसी बात से भी कुछ नहीं समझने वाले को तो ऐसा लगे कि ये गुरु कह रहे हैं। क्या कहेंगे? ये तो गुरु कह रहे हैं। जैसे आगम में आत्मा को सफल बता सकता है, लेकिन राजमल जी ने 271 का उसमें है उसकी मान की है। क्या क्या है कि आत्मा ज्ञाता है और छद्म इसका ध्येय है, मेरे भ्रांति अनादि से समझानी है। तो मैं आपको ये पूछ सकता हूँ कि छह ग्रह जिनाविंद के अलावा और ग्रह है क्या? छह ग्रह का विषय बिना जिनाविंद कहीं मिलता नहीं, सात ग्रह तो केवल ज्ञान का विषय है, तो बिना जिनाविंद तो इसका प्रतिपादन हो ही नहीं सकता। और सबक का ज्ञान में आता है जब तक इसकी प्रसिद्धि हुई, समस्त हो तो उसका कोई अनुभव हम जानकारी है, बिना निषेध कर दिया। आगम की बात का निषेध करने का मतलब ये नहीं होता कि आगम की विरुद्ध बात करते हैं, आगम की विरुद्ध बात करते हैं, ये बात सत्य में भी सत्य में है। लेकिन आत्मा को परम हित करने के लिए इससे भी आगे कुछ बात करने की हमारे गुरुओं को आवश्यकता होगी, जब कभी अगर आवश्यकता नहीं होती तो ऐसी बात करते नहीं। ये आवश्यकता कैसे लगी, कौन सी लगी, किस प्रकार से लगी, ये विषय प्रयोजन का रहता है। तो हमारी दृष्टि प्रयोजन की होगी तो बात कुछ समझ में आएगी, अगर हमारे दृष्टि प्रयोजन की नहीं होगी तो हमें ऐसा भी लग सकता है कि आगम विरुद्ध ऐसा स्टेटमेंट क्यों करना चाहिए जी, वो आगम के विरुद्ध मरे ऐसी बात क्यों करनी चाहिए, ऐसा लगेगा कि आगम विरुद्ध यहाँ बात करने का कोई अभिप्राय तो परमागम में हो सकता नहीं। ये तो परमागम की बात है, कोई फुटपाथ पर खड़े नहीं होने वाले कोई ऐसे आदमी फालतू आदमी की कोई बात नहीं है, तो बिल्कुल स्वामी के खुद के वचन है, अपनी चीज में मतलब कुमकुम आचार्य है, सुमंद गंदर आचार्य है, उमा स्वामी है, तो हमारे बड़े बड़े आचार्य है जिसके वचन आज वे नहीं होते हुए भी आधारभूत माने जाते हैं। तो अपनी चीज बात होती है तो गंभीरता और है ऐसा समझना चाहिए। ये आगम से भी तो दूसरी बात करते हैं, पर सिर्फ आगम का अभ्यास करने वाले को तो समाधान ही नहीं हो रहा है। ये बात कैसी बात चलती है, वो सफल प्रकाशक स्वभाव है पर कैसे नहीं कि वो पर को जानना वही भ्रांति है, बात भ्रांति है। सफल प्रकाशक शक्ति हमारी साथ ढेर धर्म बहुत भारी मूल्य शक्ति है, सफल प्रकाशक ज्ञान की शक्ति है, ऐसा नहीं कि सफल प्रकाशक शक्ति व्यवहार से है, शक्ति व्यवहार का विषय हो नहीं सकता नहीं, क्योंकि गुरु का मूल स्वभाव है, गुरु का मूल स्वरूप है, ये स्वभाव है नहीं स्वरूप है, ये तो उसमें व्यवहार लागू होता है, हाँ स्वरूप है, स्वरूप तो वही स्वरूप है, ऐसी बात है। तो
यहाँ ये कहा बात कहां से करी थी, सहज ज्ञान पारिणामिक भाव रूप स्वभाव के कारण, अपना पारिणामिक भाव स्वभाव के कारण, अनादि आनंद होने के कारण, पारिणामिक भाव माने अनादि आनंद सहज स्वभाव रूप होने के कारण, और अनादि आनंद होने से उसकी सामर्थ्य भी अनंत होने के कारण, तो प्रतिष्ठा भी अनंत होने के अनंत होने सहज ज्ञान अनंत प्रत्यक्ष है। केवल ज्ञान ही अनंत प्रत्यक्ष, और ये सहज ज्ञान अनंत अनंत प्रत्यक्ष, कितना अनंत अनंत प्रत्यक्ष, कितना प्रत्यक्ष है, ये बात नहीं लिखी है त्रिलोक सार में, त्रिलोक सार में इसलिए बात लिखी है कि जो शक्ति है उसमें से पूर्ण शुद्ध जैसे तैयार उत्पन्न होती है, जैसे सहज ज्ञान होने से केवल ज्ञान उत्पन्न हुआ है। ये केवल ज्ञान का सामर्थ्य कितना सहज ज्ञान से अनंत मनु पर भी अनंत में भागवान क्यों केवल क्षण का है, और सहज ज्ञान पारिणामिक भाव के कारण से अनादि आनंद है, इसलिए वो इसे अनंत गुण समर्थ है। एक समय की पूरे शुद्ध सिद्ध पर आए थे जो सहज स्वरूप है आनंद गुण समर्थ है, खुद को एक समय में तो उसकी आयु पूर्ण होती है। ये गुरुदेव ने एक बहुत सुंदर बात कही है, किसी को बहुत स्पष्ट कर दिया गुरुदेव, देखिए ये जो केवल ज्ञान की पर्याय है वो कैसे पैदा हुई बताते हैं जी, कि जो सहज प्रत्यक्ष जो स्वभाव कहा कारण परमात्मा था वो तो किसान है, पर इसका जो वर्तमान है एक समय का वर्तमान को जो समय का होता ही नहीं, इसी का जो एक समय का वर्तमान है इसके सम्मुख ज्ञान हो जाए तो इसको बिना स्पर्श करते हुए भी केवल ज्ञान उसका खुद जाए, जिसे उपयोग वर्तमान के सम्मुख हो गए तो उतना करंट लगे इस उपयोग को तो उसमें खट करके केवल ज्ञान पैदा हो जाए, जिसके वर्तमान से सम्मुख होने का प्रभाव इतना, एक वर्तमान का प्रभाव इतना तो उसका त्रिकाल का प्रभाव कितना, इसलिए कहने में आता है कि स्वरूप असीम क्या है, कैसा है असीम के कहने में आया है, चिंतन से पार है, चिंतन को छोड़ देना पड़ता है क्योंकि ये परोक्ष ज्ञान में होता है तो प्रत्यक्षता में जो नजर आता है, असीम के होने पर भी प्रत्यक्ष ज्ञान का विषय तो अवश्य अवश्य है, ज्ञान का विषय नहीं है ऐसा नहीं है, भले कितना ही मान है कितना ही अनंत है लेकिन ये ज्ञान का विषय हो सकता है, तो ये अतीन्द्र ज्ञान का विषय होता है, इंद्रिय ज्ञान का विषय नहीं होता है, इसलिए एक विशेषण वो भी लगता है कि वो अतीन्द्र है जी, दक्षिणा की तो है ही विकल्पातीत तो है, महातीत तो है, लेकिन चिंतन से वे अतीत होने से उसको अतीत कहने में आया है, लेकिन अतीत है इसलिए ज्ञान गोचर नहीं है, तो बात नहीं है, ज्ञान गोचर अवश्य है, ज्ञान में तो आ सकता है। कर्म पारिणामिक भाव रूप स्वभाव के कारण इस भव्य का स्वभाव कर्म स्वभाव होने से भव्य का क्यों कहा, क्योंकि अभव्य उसका शिकार नहीं करता, इनकार में अभव्य उसका शिकार नहीं करता, इसलिए प्रसन्न हो गए के सुंदर पढ़ करके इतनी प्रसन्न चित्त है, खुशी में इसकी प्रसन्नता होती है, अपनी हमेशा अनुभव देखकर होती है। इसलिए भी हमारा परम पारिणामिक भाव स्वभाव रूप मालूम करता है। श्री गुरु ने क्या कह दिया कि मैं भव्य हूं, ऐसा कह दिया तो भव्य हूं तो नहीं लेंगे, असल भव्य हूं ऐसा कह दिया। ये बात हो गई इसमें, क्योंकि मालूम करता है, निकलता है इसमें से ऐसा पसंद है। पर क्या कह दिया आदमी तो बात नहीं आएगी कि भव्य हो भव्य हो पारिणामिक भाव सब थे एक साल है, क्योंकि ये शुद्ध पारिणाम है। कैसा है ये शुद्ध पारिणामिक है, भव्यत्व अभव्यत्व पारिणामिक भाव तो है ये शुद्ध पारिणामिक है। आता है ये समय साल 319 गाथा घोषणा कर देती थी, हम सुना कर देते हैं लेकिन घोषणा कर देती थी उसमें बात तो पारिणामिक भाव अशुद्ध है। और शुद्ध पारिणामिक भाव तो भव्य भव्य दोनों के तो एक साल होता है, उसे गुना वो बात नहीं ली। यहाँ भव्य का स्वभाव होने से समझ ज्ञान से अतिरिक्त अन्य कुछ उपाधि नहीं है, समझ ज्ञान के बिना कोई उपाधि नहीं है। तो जो आपके गाथा का अधिकार करेगा ये बात मैं सुचारु होती है, समझ ज्ञान के बिना कोई उपाधि नहीं है। दूसरे पांच ज्ञान में तो केवल ज्ञान है, यहाँ तो भगवान पारिणामी भाव की गई आत्मभावना चलती है, केवल ज्ञान की भावना नहीं चलती है। ये आत्मभावना की बात चलती है जिसे आत्मभावना का है, जब मनुष्य को भी आत्मभावना होती है जी, तो कुमकुंद स्वामी जैसे समस्त आचार्य को किस प्रकार से किस ढंग से बात होती होगी, इसका शिकार भगवान पद्म ब्रह्मदारी ने हमें खब दिया है जी। तो ऐसी आचार्य की भावना होती है, उसी को आत्मभावना वो कहते हैं, इस प्रकार से इनकी भावना चलती है जिससे उनको कोई अपेक्षा रहती ही नहीं। मन दिगंबर हो जाने से बाह्य पदार्थों की अपेक्षा तो वैसे ही नहीं रही, ये तो दर्शन मात्र से मालूम पड़ता है जी। लेकिन आत्मभावना के मैं तो सीमा आत्म किसी की अपेक्षा नहीं रही, इसका अंतरंग स्वरूप है गुरु महाराज का। गुरु महाराज का जी आत्मभावना मिली क्या के श्री गुरु का स्वरूप क्या स्वरूप है, ऐसे हम देखें इनको इस प्रकार से इसका दर्शन करें कि इन्हें हमेशा हमेशा निरंतर दिन रात हमेश आत्मभावना में रहते हैं, दूसरे शिखर भी कहीं भी रहते लय हो रही है। जैसे बहुत रसिक है भावना का विषय तो बहुत रस वाला है, लेकिन हमारे यहाँ तो समय की पाबंदी है, इसलिए रस तो अंतर में लेना है और में तो बातें गा है।
और यहाँ से आप यहाँ पर